أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان الان آج جنوري 1979 کی 19 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القصص کی آیت 48 سے ہو رہا ہے. اس سورہ کے شروع سے ہی داستان چلی آ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کی یا بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی. اور اسی سلسلے میں ان سے کہا گیا تھا, انہوں نے کہا یہ تھا, بلکہ پہلی آیت یہ تھی کہ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. کہ جب ان پر کوئی مصیبت خود اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری طرف بھی کوئی رسول آتا اور ہمیں صحیح رہنمائی دیتا تو ہم غلط راستے پہ نہ چلتے. گویا یہ ان کی طرف سے اعتراض یا الزام تھا کہ صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے ہم غلط راستے پر چلے ہیں. بعد میں ہے کہ فلما جاءہم الحق من عندنا, خاص صورت یہ ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری طرف بھی اگر کوئی اس کا رسول آ جائے تو ہم صحیح راستے کے اوپر چلنے. کہا جب ان کی طرف سے ایک رسول آ گیا حق کو لے کر تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس رسول کا اتباع کرتے. پھر نے کہا وقالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ. یہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی کسی رسول نے آ کر کسی قوم کو ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کیا تو وہ اس کے جواب میں کہتے رہے کہ یوں ہی غلط کہتے ہو تم, ہماری روش کبھی ایسے تباہ کن نتائج کی طرف ہمیں نہیں لے جائے گی, ہم بالکل صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. وہ اپنی حالت میں تبدیلی کرنے پر تیار ہوتے ہی نہیں تھے کہ اور کہتے وہ یہ تھے کہ جو کچھ تم کہتے ہو کہ اس سے تمہاری تباہی ہو جائے گی وہ تباہی لاؤ, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے. یعنی تباہ ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تباہی سے کیسے بچا جاتا ہے, اندازہ لگائیے. اور کچھ انہیں پر یہ منحصر نہیں, ہر غلط کار غلط کوش اور غلط دین کا یہی وطیرہ ہوتا ہے کہ جب اس کی غلط روی کے غلط نتائج کی طرف سے متنبہ کیا جائے تو وہ کبھی مانتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جب ایسا ہوگا پھر دیکھے جائے گی, اب تو آرام سے بھی غلطی ہے, حضرت کی خبر خدا جانے. پہلے لاؤ وہ بیرانیاں وہ تباہیاں جن سے تم ہمیں آگاہ کرتے ہو تو پھر ہم تمہاری سمجھیں گے کہ تم ٹھیک کہتے تھے. ویرانی ہو چکے تباہ ہو چکے تو پھر اس سمجھنے سے فائدہ کیا ہوگا. یہ عام روش چلی آ رہی ہے. بہت بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو بر وقت انتباہ سے سمجھ سوچ کر اپنی روش میں تبدیلی پیدا کر لیں, ورنہ وہ اپنے جذبات کے تابع چلتے جاتے ہیں اور کہتے یہی ہیں کہ ہاں وہ دکھاؤ نا جو کچھ تم کہتے ہو, دیکھیے ہم تو اور پنکتے چلے جا رہے ہیں, کہاں ہے وہ تباہی, کہاں ہے وہ خطرہ جس سے تم ہمیں اس طرح سے وارن کرتے تھے اور ہمیں آگاہ کرتے تھے. یہ بھی جانتے نہیں. تو یہ کہنے لگے کہ یہ بھی ان سے یہ کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جس طرح سے کہ موسیٰ کے زمانے میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے جب ان کی بات نہ مانی تو اس کے تباہیاں آئیں, تو اس قسم کی تباہیاں لا کر پہلے ہمیں بتاؤ پھر ہم تمہاری بات مانیں گے. تباہیاں جب آ چکے تو پھر بات ماننے نہ ماننے میں فرق کیا رہ جاتا ہے. لیکن یہ وہی روش کو ہم جو چلی آ رہی تھی اسی کو یہ بھی ریپیٹ کر رہے تھے, وہی جواب یہ بھی دے رہے تھے. حوالہ میرا پھر دماغ ہوتی ہے میشا من قبل دیا گیا کہ ان تباہیوں کے باوجود کیا وہ قوم صحیح راستے پر آ گئی تھی, پھر کچھ تو تباہی ہو گئے تھے, جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے بھی صحیح راستہ قبول نہیں کیا. इसलिए कि सही रास्ता कबूल करने का अभी आगे बात आती है, उसका तरीका और है। मैं तुम्हें वो तरीका बताता हूँ कि जिससे तुम गलत और सही में इम्तियाज कर सको। अगर वो तरीका तैयार न किया जाए तो अगर तुम्हारे ये तमाम मतालबात और तकाजे पूरे भी कर दिए जाएं, तो फिर भी तुम सही रास्ते की ओर नहीं आओगे। और आगे चल के बताया है कि सही रास्ते पे वो आता है जो गौर व फिक्र और दिल में बसीरत के काबे पहले फैसला करे कि कौन सा रास्ता गलत है और कौन सा सही है, फिर जज्बात से अलग हट कर सही रास्ते की तरफ आए। ये तो सारी कट हिस्तियां हैं कि लाओ वो खतरा, दिखाओ वो तबाही, फिर उसके बाद हम ये करेंगे। ये तरीका होता ही नहीं सही। कहा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी इतना कुछ उन फिरौन वालों के साथ हो गया था, तो उसके बावजूद उन्होंने कहा यह था कि कालू सेहरानी पजाहरा वकालू इन्ना बेकुल्लिन काफिरून। उन्होंने कहा था कि ये दोनों भाई हजरत मूसा और हजरत हारून ये दोनों झूठे हैं, यही कह रहे हैं कि खुदा की तरफ से ये चीज हमें मालूम हुई है कि तुम्हारी इस प्रमुख का नतीजा तबाही होगा। गलत कहते हैं, फरेब देते हैं। जब मैंने क्या कहता हूँ ना कि ये शहर के माने फरेब दही होता है उनके यहाँ, ये जादू का जो लक्ष्य है ये तो हमने तर्जमा इसका यूं किया। वो कहते थे कि ये फरेब है जो तुम कहते हो कि खुदा की तरफ से ये बात मुझे बताई गई है कि तुम्हारी गलत प्रवेश का नतीजा तबाही होगा, इसलिए इन्ना बेतुल्लिन काफिरून, जो कुछ भी तुम कहते हो हम उससे इनकार करते हैं, हम उनमें से एक बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के जो यहूदी थे, दीगर इलाके या ममालिक तो एक तरफ, खुद अरब में और अरब में भी खुद मदीने में वे बड़ी मुअस्सर हैसियत रखते थे। सबसे ज्यादा मुखालफत मक्के में तो कुरैश की तरफ से हुई थी और मदीने में आकर इन यहूदियों की तरफ से हुई थी। ये यहूदियों की अजीब रविश शुरू से ही, जब से ये इनके हाथ से ये ममलकत और हुकूमत और इकतदार और बल्कि घर बार छूटा, वांडरिंग जू को उनको कहा जाता था, ये खाना बदोश ही रहे 2000 साल तक करीबन, कहीं इनको छत नसीब नहीं हुई, ठिकाना नसीब नहीं हुआ, घर नसीब नहीं हुआ। ये तो पहली बार है इनकी तारीख में 2000 साल के बाद, यानी 71 ईस्वी में आखिरी तबाही इनकी हुई थी ना 35 के हाथ में, रोमी गवर्नर के हाथ में, जब इनको निकाल दिया गया था यरूशलम से। उसके बाद 2000 साल के इस पूरे तारीख के अर्से में पहली बार है ये जो इसराइल की हुकूमत यहाँ कायम हुई है, और उसके लिए भी कुरान ने यह कहा था कि ये जहां जाएंगे इनके पीछे पीछे जिल्लत और खारी लगी होगी, इल्ला बिहमदिल्लाह व बिहमदिल्लाह। ये सूरत में मिल सकेगी कि या तो ये खुदा के कवानीन को थाम के अपनी रविश में तब्दीली करे, या कोई इंसानों की कोई जमात कोई कौम इनको कोई सहारा दे दे तो उससे कुछ वक्त के लिए ये बच जाए। ये बेहदिन नाश है जिसकी वजह से इसराइल की हुकूमत काम हुई है, वरना इससे बेहतर तो ये वांडरिंग भी उठे खाना में दो, इनका घर भागी कोई नहीं था इस काम का। लेकिन इसके बावजूद ये अजीब किस्म की बढ़िया काम थी, इन्होंने जिस मुल्क में ये रहे उस मुल्क की माशियात और इकतसादियात वहां की इकोनॉमी को अपने हाथ में रखी, यानी सूद या रिबा तो इनकी मईशत या माशरत का बुनियादी जुज था। आज भी आप देखिए यूरोप की मुख्तलिफ हुकूमतें हैं या पूरे का पूरा अमरीका, इतनी इतनी अजीम शाम वो ममलकतें हैं, लेकिन उनकी रगेजान पंजाब यहूद में है। हर ममलकत की मईशत जो है वो यहूदियों के हाथ में है, और इस मईशत के जोर से वो इनकी नाक में नकेल डाले हुए हैं, जिधर जी जाता है इनको घुमाते रहते हैं, इनकी सियासत इनके जेरे ताबे चलती, इनके ताबे चलती है। ये चीज इन्होंने अख्तियार कर रखी। मदीना में भी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए हैं, मदीने की मईशत भी यहूदियों के हाथ में थी, और वहां के अनुसार भी इनके डिजाइन होकर वहां रह रहे थे करीबन, तो इसलिए वहां सबसे बड़ी मुखालफत इनकी तरफ से हो रही है। इसलिए पुराने करीम ने जो बड़ी इस्राइल के किस्से को बार बार दोहराया है और फिर उसके अंजाम अवाकिब से इन्हें आगाह किया है, तो वहां के जो यहूदी थे सबसे पहले वो मुखातब किए कि तुम्हारे साथ तो ये कुछ बीत चुकी है, तुम तो जानते हो कि जवानी में खुदाबंदी को छोड़ देने का नतीजा क्या हुआ करता है। अब फिर वही कवानीन अपनी असली शक्ल में फिर आए हैं, अगर इनसे तुम इनकार करोगे तो पहले तो खैर वांडरिंग की हुई थी थे लेके जाते थे, इसके बाद तो मालूम नहीं तुम्हारा असर क्या होगा, इस मुल्क से भी तुम्हें निकालना पड़ेगा, चुनाचे निकाल दिए जाइए वहां से। गैर मुस्लिम इस मुल्कत के अंदर रहते थे, बड़े अमन में रहते थे, उनको उनके हकूक की पूरी जमानत उनको दी गई थी, हकूक की जमानत। आज बातें होती हैं गैर मुस्लिम अकलियत जिसे कहा जाता है इनके हकूक, बात तो लंबी हो जाएगी, मैं उनके हकूक का सिर्फ दो टुकड़ों में बात करता हूं कि इनको तहफ़ कितना हासिल था। मिस्र के गवर्नर थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में गालिबन मिस्र के, वहां उन्होंने किसी जिन्नी थे जिससे और वो यहूदी था, यानी गैर मुस्लिम जो इस्लामी ममलकत के अंदर रहते थे उन्हें जिन्नी कहा जाता था। तो ये आज तो ये जिन्नी का लफ्ज काफिर की तरह बड़ा काबिल नफरत सा नजर आता है ना, जिन्नी के माने होते थे जो जिन्नी के माने हैं वो जिनकी पूरी जिम्मेदारी इस हुकूमत में ले रखी है, हर किस्म की जिम्मेदारी, किस किस बात की जिम्मेदारी वो मैं अभी अर्ज करूंगा। किसी यहूदी ने कोई बात ऐसी की या कही तो उन्होंने उसे कहा हज़रत अल्लाह खुदा तुझे जलील करे, बात ही कुछ नहीं है, गाली भी नहीं है, कह दिया। और कह देने के बाद और तो सुनिए अजीजा मन जमानत किसे कहते हैं, अपना इस्तीफा भेज दिया बाद खिलाफत में कि मैंने एक जिन्नी की इज्जत नफ्स के खिलाफ दो नफ्स कह दिए हैं, मैं समझता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि इस्लामी मामलिकत का गौर लगा सकूं, मैं इस काबिल नहीं हूं, बाद खिलाफत में बुलाया गया, बड़े बयानदार बड़े काबिल गवर्नर बयान का तो उससे अंदाजा लगा लीजिए ना कि जिस रास्ता एक लफ्ज निकल गया जुबान से तो उसके बाद अपने ऊपर खुद ये सजा वारद कर रहे हैं और कहते हैं मैं इस काबिल नहीं हूं कि इस्लामी मुमलकत के अंदर कोई मनसब होल्ड कर सकूं, क्योंकि मैं अपने इस किस्म के जज्बात के ऊपर काबू नहीं रख सका, मेरी जुबान से ये बात निकल गई, एक जिंदगी की दिल छिटी हो गई, मैंने उसके जिले का लक्ष्य कर दिया। मदीने आ गए, दीगरों का कहा मैं तेरा कहा समझाया, बड़े काबिल थे कि ये कोई बात नहीं है, इससे तो कोई ऐसी खराबी वाक्य नहीं हुई, इसने कहा कि बात ये नहीं है, वो एक शख्स के जिसकी इज्जत और नफ्स की जिम्मेदारी हमने ले रखी थी, अगर मैं उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता तो मैं इस मनसब को होल्ड करने के काबिल नहीं हूं, नहीं गया सवाल ही नहीं, ये होता है जिम्मेदारी, इसे कहते हैं जिम्मे। और दूसरा वाक्य तो फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, ये यहूदी था वो भी, वो जा रहा था बुद्धा, कहने लगे कहाँ जा रहे हो, कहने लगे कि वो मुमलकत की तरफ से जो टैक्स आया दिया है वो पे करने के लिए जा रहा हूँ, सजाने की तरफ अदा करने के लिए। कहा तो मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं है, नए नए आए हो, अब से यहां आए हो, कहने लगे अभी थोड़े दिन हुए हैं कि मैं यहां आया हूं, तो वो जो टैक्स आया हुआ है उसे पे करने को जा रहा हूं। कहने लगे थोड़े दिन तुम हुए है अभी आए हो, तो मुमलकत ने तो अभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जाओ साल भर गुजारो, जब मुमलकत पहले तुम्हारे लिए रसाई के लिए कुछ करेगी तो फिर टैक्स देने के लिए आना, इसके बगैर टैक्स یہ تھے ان یہودیوں کے ساتھ جو اس اسلامی مملکت کا وتیرہ تھا وہ یہ تھا، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی، اس قسم کے لوگ جن میں جرتیں مضبوط ہو جاتی ہیں، کریکٹر کی بلندیاں باقی نہیں رہتی، دولت کے اعتبار سے کتنے ہی بڑھ جائے لیکن یہ لوگ کمینہ فطرت ہوتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے مسلسل سازشیں کی مدینے کی اس مملکت کے خلاف. پہلے انہیں مدینے سے نکالنا پڑا اور ان سے کہا کہ باہر کے علاقے میں جا کے بس بیٹھے، خیبر کے علاقے میں ان کو نکال دیا گیا، وہاں بھی یہ باز نہیں آئے سازشوں سے، تو آخر الامر ان کو سرزمین عرب سے باہر نکال دینا پڑا. یہ تھی کیفیت ان یہودیوں کی اس زمانے میں بھی، اور ہمیشہ یہ یہی کچھ کرتے چلے آئے. اب انہوں نے یہ بات ہزار قسم کی کاٹ جتنی ہیں جو روز کرتے رہتے، قرآن کریم کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اب ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے، قل فاتو بکتاب من عند اللہ ہوا احدا منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. ان سے کہا کہ جو دین میں پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو تمام انبیاء کرام کو دیا جاتا رہا، اور یہی دین تھا جو اصولی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ اپنی اصلی شکل میں تمہارے پاس نہیں ہے. اگر وہ اپنی اصلی شکل میں تمہارے پاس ہوتی تو تم دیکھتے کہ وہ اسی طرح سے ہدایت دینے والی کتاب تھی جس طرح سے یہ قرآن ہدایت دینے والی کتاب ہے، اور جس طرح اس قرآن کے متعلق میرا دعویٰ ہے کہ اس سے اس کی مثل دوسری کتاب نہیں کو پیش کر سکتا. تورات جو تورات کو خیر اس کتاب کا نام نہیں تھا، یاد رکھیے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کردہ کتاب کا نہیں نام نہیں، بلکہ وہ جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل ہوئے ہیں ان کی طرف جو مختلف سے ہو گیا، ان کی طرف جو وہی آتی رہی، پہلے تو شاید اصلی شکل میں وہ ہو لیکن بہرحال ان تمام کے مجموعے کا نام ہے جسے یہ تورات کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں عہد نامہ عتیق. تو کہا گیا کہ اگر وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی وہ اپنی اصلی شکل میں تمہارے پاس ہوتی تو تم دیکھتے کہ وہ قرآن ہی کی طرح بے نقص و بے نظیر ہوتی، وہ قرآن وہ وہی ہدایت پیش کرتی جو خدا نے پیش کی تھی. بات تو یہ ہوئی ہے کہ وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اور اس کا اعتراف تو خود ان کے ہاں موجود تھا. وہ جو مجموعہ ہے ان کتابوں کا جسے اب اولڈ ٹیسٹمنٹ یا ہمارے عام الفاظ میں تورات کہہ کر پکارا جاتا ہے، اس میں ایک اتنا سا حصہ ہے جسے صحف موسیٰ کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کی طرف جو منسوب کرتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کی طرف جو کتاب نازل ہوئی تھی، جو وہی نازل ہوئی تھی اس حصے میں وہ وہی ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ سنتے کہ اس حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے واقعات بھی درج ہیں. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں اس کتاب کے متعلق، جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہے کتاب موسیٰ. بہرحال یہ بات کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام تو ایک دین ہے، قرآن کو چھوڑ کر جتنے مذاہب دنیا میں ہیں وہ مدعی ہیں کہ ہمارے بانی مذہب یا ہمارے پیغمبر کی طرف یہ کتاب نازل ہوئی تھی، کوئی کتاب ان کے پاس ہے؟ میں نے اس پہ تحقیق کی اور میری کتاب ہے یہ مذاہب عالم کی مبینہ آسمانی کتابیں یا آسمانی کتابوں کی تاریخ، وہ یہاں ہے چھوٹی سی. تمام مذاہب عالم کی جتنی ان کے ہاں کی مبینہ آسمانی کتابیں ہیں ان کی تاریخ اس میں دی ہوئی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا. خود ان اہل مذاہب ان مذہب والوں کے مورخین کی طرف سے ان کے سیاسی اور مذہبی پیشواؤں کے تمام اعتراضات اس میں دیے ہیں، वो कहते हैं कि हमारे पास हमारे नबी की असली किताब नहीं है, वरना दीन के मुतल्लिक ये बात नहीं थी कि खुदा ने अगर तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भी एक किताब भेजी वही भेजी, कुछ अरसे के बाद फिर उन्होंने वो अगर दाऊद की तरफ से भेज दी, फिर कुछ अगर तो ईसा की तरफ भेज दी अलैहिस्सलाम, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेज दी, तो गोया और उनमें बड़ा इख्तलाफ बानी, एक ही खुदा की तरफ से ज़ाबता हिदायत, उसी की तरफ से आने वाले रसूल, और उन रसूलों की कैफियत यह कि एक की तालीम दूसरे से नहीं मिलती, मसलन के दायरा ये हो ही नहीं सकता था। दीन के मुतल्लिक तो कुरान ने कहा था 42:13। आप देखिए कि कुरान करीम की सदाकतों की कितनी शहादात पाई जाती है इसमें, सारी दुनिया के मुतल्लिक ये कहना, हर मजहब के मुतल्लिक ये कहना, तो इसके बानी की तरफ जो खुदा की तरफ से गई है इसी को वही है कि जो आज मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हम भेज रहे हैं। शरा लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बिही नूहं वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। ये रसूल जो दीन तुम्हें खुदा की तरफ से दिया जा रहा है ये असूली तौर पर वही है जो इसके पेश पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के अंबिया इकराम को हम देते चले आ रहे थे, ये वही है। और अगले दो लफ्ज भी कह दूं तो बात समझ में आ जाए कि फिर उस किताब के साथ वो लोग क्या करते थे और हमने भी क्या किया है। क्या कहते थे हम उनसे, अनअकीमुद्दीन, अब दीन को हमेशा कायम रखो, और इसका अमरी सबूत ये होगा वला का तफर रसू सी, तफर का पैदा ना करो आप उसमें, तफर का पैदा हो गया तो अब दीन बाकी नहीं रहता। अब दीन तो तमाम इंसानियत को एक मरकज पर जमा करने के लिए, एक आलमगीर बरादरी बनाने के लिए आता है, और अगर उस किताब के मुद्दियों के अंदर भी फिरके पैदा हो जाए तो अब दीन रह ही नहीं सकता। अगर एक खुदा की तरफ से एक किताब एक ज़ाब्ता हदायत पूरी की पूरी मिलत के लिए हो तो फिर तफरका का किस तरह से पैदा हो, एक इंसानों की दुनिया में भी एक मम्लकत के अंदर मम्लकत की तरफ से जो ज़ाब्ता कानून दिया जाता है, मम्लकत सारी में कोई एक शख्स और कानून अपनी तरफ से वजह करके उसकी पैरवी शुरू कर दे तो वो बगावत कहलाती है। अब दीन को मानने वाली उम्मत के अंदर मुख्तलिफ फिरके पैदा हो जाना ये बगावत है दीन के खिलाफ। बगावत को कुरान ने शिर्क के लफ्ज़ से तबीर किया है, एक से दो ज्यादा अथॉरिटीज मान लेना, इसी को बगावत कहते हैं। एक मामलकत के अंदर एक अथॉरिटी होती, और अगर उसी मामलकत के अंदर आप 2, 4, 10, 20 अथॉरिटीज मुख्तलिफ मान लें, और अथॉरिटी लॉ गिविंग कानून देने वाली अथॉरिटी, और मुख्तलिफ जाबते आपके यहां आ जाए कवानीन के, तो वो मम्लकत कायम रह सकती है या मम्लकत बाकी हो सकती है, उसका कोई दावा भी मम्लकत का चल सकता है। जीवन मान ये मजहब का सवाल नहीं है, ये दीन का सवाल है, ये मम्लकत का सवाल है, ये निज़ाम मम्लकत का सवाल है। कभी दुनिया में ऐसा हुआ है किसी मम्लकत के अंदर कि 20 किस्म के वहां जवाबते कवानीन हैं और उसके बाद ये कहे कि हाँ हाँ जी ठीक है ठीक है, हर एक को इजाजत होनी चाहिए कि अपने अपने जवाब के मुताबिक चलता जाए, ठीक है जी चलता जाए ना, जरा मम्लकत के जो कानून का जवाबता है उसके अलावा दूसरा जवाबता का नहीं एक और चला के देखिए मम्लकत के अंदर, टकराती हैं दो गाड़ियां या नहीं जाते थी? दूसरे जाबते को मुद्दन करने वाला मानने वाला चलाने वाला मम्लकत का बागी करार पाता है, और इसे शिर्क कहते हैं। इसीलिए कुरान ने जो कहा था ना कि वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, देखना तुमने, ये हमें आगाह किया गया कुरान मानने वालों को कि देखना तुमने कहीं मुशरिकीन में से ना हो जाना, यानी समझा कि ये जिन ने फैसला कर शायद ये तस्वर करने के कहा यह गया है कहीं बुत प्रस्ती ना शुरू कर दे, गुलाब पूर्ण बनाए मुश्किल की ना देखें कहीं मुश्किल ना हो जाना, तो जैन ये था तो खुदा नहीं है कि ये कहेंगे कि नहीं सर हम तो नहीं बुत प्रस्ती कर दो, बुद्ध हमारे यहाँ होते ही नहीं, बुद्ध तो खड़े होते हैं, हम तो लेते हुए बुद्धों को पूछते हैं ये प्रश्न ये थोड़ी है उनके साथ हो रही है ना प्रश्न क्या तीन दिन क्या हो रही है। इस लेटी हुई कौन के बुद्ध भी लेते हुए होते तो वही बात साफ कर दी बला तो पूर्ण मिलल मुश्रकीन मुश्रकों में से ना हो जाना मिलल लजीन फर्रको देना हूँ। सिर्फ ये है कि अब दीन निजाम ममलकत के अंदर तुम दो अथॉरिटी मानने लग गए ये शिर्क है। लीगा ने मान तो सोचिए तो सोचिए कि इस उम्मत के अंदर के साथ ये वो फिका है हमसी है फिका है मालकी है सिर्फ फिका है शास्त्री है हदीस वालों की अपनी फिका है फिका है जातरी है फिका के माना जाता है कानून। एक ममलकत के अंदर इतने लोगों के कानून और उसके बावजूद दावा के हाँ साहब हम इस्लाम के हैं और दीन के ऊपर और पीछे तो से वो कहते हैं मिलल मुश्रकीन कुरान की रूह से सिर्फ और क्या जब उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो ये कोई नजरी चीज नहीं है इलाह के माने है वो अथॉरिटी जो कानून देने वाली है एक के सवा दूसरा नहीं है। जहां दिन में हर नस्ल के पांच पांच दफा सामने कम ईरान होता है मीनारों पे खड़े होकर चार 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 लाउड स्पीकरों के साथ अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह ऐलान कर रहा है कि इस ममलकत में खुदा के सजा कोई अथॉरिटी जाबता है कानून देने वाली नहीं है और उसके बाद ये कि इनकी अजान अलग अलग शिरकों की अब होने लग गई यानी वो ऐलान भी मुख्तलिफ हो रहा है शिर्क नहीं कहा ये था कि अब दीन तो वही था सिर्फ किसी उम्मत को नहीं कहा कहा कि हम तो शुरू से आखिर तक अब दीन वही देते चले आ रहे हैं एक खुदा एक नौ इंसानी तो एक ही तो जाबता है कानून होना चाहिए था और कहा यह कि याद रखो कहा हर नबी से यह था कि वला तसर रखें सुनिए अगला फिक्र मेरे बात तो बड़ी साफ की थी लेकिन कबूरा अल मुशरकीन मातदूसम इलाहे ये दावित मुशरकीन पर बड़ी ग्रांग गुजरेगी जो हम कह रहे हैं बड़ी ग्रांग गुजरेगी। आज भी अजीबान मन गैर मुस्लिम जहां बसते हैं हिंदू ईसाई उर्दी वो तमाम बसते हैं ऐसे लोग बसते हैं जो खुदा को भी नहीं मानते हैं उन सबको बर्दाश्त किया जाता है मजहब परस्त तबके की तरफ लेकिन जो ये कहता है कि साहब जाबता हदायत सिर्फ एक खुदा की किताब हो सकती है सबसे ज्यादा उसकी मुखालफत होती है कबूरा अला मुशरकीन बड़ी गरांग गुजरती है ये बात जमात फरतू इला माजा नबियों ने तो कभी ये तफरके वाली बात की नहीं थी सवाल ही नहीं एक ममलकत के अंदर अथॉरिटी वाले जितने भी हैं जितने एयर बन डिसेंडेंट्स होते हैं यानी ममलकत अगर कायम रहती है तो सलसल में हुकूमतें बदलती रहती हैं तो ये नहीं होता कि एक दूसरी हुकूमत उसी ममलकत की हुकूमत हो और उसी ममलकत की मुखालफत कर रही हो कहा यह बात नहीं था नबी तो कर ही नहीं सकते थे ऐसे नबियों के बाद जो तफरका पैदा किया है क्या हुआ बगम बहना हूं हर एक ने अपनी अपनी ममलकत पैदा कर ली काम करने का बगम तो वही बना रहे बाहनी करके इसकी वजह से ये हुआ वरना अब दीन तो वही था ये यहूदी ये कहते थे कि अगर आप कहते हैं कि दीन वही था तो जो हमारे पास ये तौरात या हमारे पास नबियों की किताब है बहुत से अहकाम कुरान में जो दिए जा रहे हैं उससे मुख्तलिफ हैं उनसे कहा यह जा रहा था ये खुदों ने किताबें दे आदिम तुम्हें यकीन ना आजम इंजिल्ला तुम्हारी कैफियत ये है कि खुद अपने हाथ से तुम ये लिखते हो और उसके बाद कहते हो ये अल्लाह की किताब ये तुम्हारी किताब ही मुहर्रिक है। एक तो ये चीज दूसरी चीज और कुरान करीम ने बताई है वो बड़ी अहम है उसने कहा कि अब दीन के असूल और हदूद वो तो गैर मुतबद्दल रहते हैं शुरू से आकर लेकिन उन हदूद के अंदर जो आप ममलकत के लिए जुजियात मुरतब करते हैं जो तरीके अख्तियार करते हैं उनको नाफिज करने के ये आकाम जरियत जिन्हें आप कहते हैं ये जमाने के तकाजों के साथ बदलते रहते हैं यही चीज अब दीन को दिया गया है शुरू से आखिर तक उसमें दीन के असूल को वही रहे थे लेकिन हर जमाने के तकाजों के एतबार से उस दिन की जो जुजियात थी, जो उसके डायलॉग थे, उनमें तब्दीलियां होती रहती। कुछ तो ऐसी सूरत थी कि नए रसूल के आने के वक्त में पहली किताब में इंसानों ने तारीफ कर दी। कुछ ऐसा भी हुआ कि हवादत के जमाने में उनको या तो बर्बाद ही कर दिया, तलब कर दिया, या इंसानों ने उसे परामोश कर दिया। और ये भी सूरत हुई कि बाज जुजियात में तब्दीली भी जरूरी समझी गई, क्योंकि जमाने के तकाजे बदल गए थे। और इस वजह से पहले नबी की तरफ या पहले अंबिया की तरफ जो बाज जुजियात दी गई थी, या तो अगर वो फरामोश कर दी गई थी, मुहर्रिक हो गई थी, जाया हो गई थी, तो उन्हीं जैसे आकाम नए नबी की विसातत से दे दिए गए। और अगर जमाने के तकाजों के एतबार से उनमें तब्दीली की जरूरत महसूस की गई, तो फिर उनसे बेहतर जुजियात उस नबी के जमाने के तकाजों के मुताबिक वो दे दिए गए। सूरह बकरा की अहम आयत, जिसके गलत मफहूम में, और कौन सी ऐसी मुहकम बात कुरान की है जिसका गलत मफहूम नहीं लिया गया, उसके गलत मफहूम ने कहां से कहां हमें पहुंचा दिया। आयत है, ऊपर जिक्र है अहलुल किताब का, मायाबुल्लजीना कफरु मिन अहलुल किताब वल मुशरिकीन जिनजला अलैकुम मिन खैरिन मिनकुम। ये पसंद ही नहीं करते थे कि कोई दूसरा रसूल आ गए और वो दूसरी किताब हमारे सामने पेश करे, ये इसको पसंद ही नहीं करते थे। ये है जी जो बता 105 मैंने अभी आज पेश की। तो ये जो अहले किताब थे, ये लोग, उनका ये एतराज था कि इसमें फिर इख्तलाफ क्यों इन अहकाम में। कहा उसकी वजह यह थी, मा नंसख मिन आयतिन औ नुंसिहा नअते बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। कहा कि पहले नबियों की तरफ जो आकाम नाज़िल किए गए थे, उनमें से अगर कुछ वो थे जो भुला दिए लोगों ने, फरामोश कर दिए, तलफ हो गए, अपनी असली शक्ल में बाकी न रहे, तो हम करते ये रहे हैं कि अगर तो उनमें किसी तब्दीली की जरूरत नहीं थी, तो हम उन्हीं जैसे आकाम नए रसूल के दीन में दे देते दे। और अगर जमाने के तकाजों से बदले हुए हालात के ताबिया और देने की जरूरत थी, तो नाते बेखैरिन मिन्हा उनसे बेहतर आकाम हम दे देते दे। ये वजह थी कि नया रसूल जो आता था, उसके आकाम की जुजियात में हो सकता था कि पहले रसूलों की किसी किताब के बाद आकाम से इख्तलाफ भी उसमें हो। और उसकी वजह यह थी कि कुरान ने बताया, पहले इसके कि मैं बताऊं कि यहां से फिर हमारे साथ क्या क़यामत गुजरी इस आयत के मातहत। एक और मैं आज किसी की तसलसल में पेश करूंगा, 22:52 22:62 जिस आयत के मुतल्लिक ये अजीब किस्सा है। कौन सी आज बातें रह जाती है सारी की, मारूफ में तेरे शायद मत छोड़ा जमाने, वमार सलना मिन कबले का मेर रसूल इन वला नबी इल्ला इजा तमन्ना अल्का शैतान की उम्मीयत ही फयंसा खुल्ला हो मा युल्की शैतान सुन्ना योहके मुल्ला हो आयात वल्ला हो अलीम हजीम। रसूल होता ये चला आ रहा कि हमने जो उस रसूल की तरफ वही भेजी, उस रसूल के बाद शयातीन ने उसकी वही में बहुत कुछ मिला दिया। कुरान तो हर उस शख्स को, हर उस कस्बे को जो कानून खुदाबंदी से सरकशी बरते, उसे शैतान कह कर पुकारता। शयातीन इन मजहबी पेशवाओं के जो सरफैल होते हैं, वो उन्हें शयातीन कहता है। इसी तरह से सियासी तौर पर जो कवानी में खुदाबंदी से सरकशी बरतते हैं, वो उन्हें भी शयातीन कैसे बात है। हत्या के एक फर्द जो खुद भी कानून खुदाबंदी से सरकशी बरता है, कुरान उसे भी शैतान कहता है। हम तो किसी उसको कहते हैं ना कि और जो बाहर होता है, हम नहीं होते हैं, अपने आप से कहते ही नहीं है, यही सब कहीं और होता है, न कहीं वो मिला है न कहीं देखा है आज तक, वो हमने मोड़ा रखा हुआ है इस काम के लिए तो सब मैंने नहीं ये किया, शायद काम ने ये किया है साहब, वो कहीं और है। और फिर हर शायद वो शैतान वो की है, वो अरबों इंसान जो दुनिया में बसते हैं तो हर एक का गलत काम वही करता है। कहा यह गया है कि होता ये रहा कि हमने रसूल की तरफ वही भेजी, उसके मरने के उसके जले जाने के बाद शयातीन ने उसकी उस वही जो वही हमने की थी उसके अंदर वो मिलावट आमेज कर देते थे। हा यंसाफुल्ला हो मायल के शैतान, यहां वही लफ्ज है मनसूख का। दूसरा नबी आता तो जो कुछ इन शयातीन ने उसमें अमेजिश कर रखी थी खुदा उसको मिटा देता, मनसूख कर देता और असली वही को उसकी जगह दे आता। बात बड़ी साफ ये करता रहा, हर मिलावट को वो पाक और साफ कर, और तकाजे भी ये हैं वही तो एक तक रही। आज भी तकाजा ये हो रहा है नई हुकूमत से, जो कहते हैं पुरानी हुकूमत ने हमें ये दिया, कहा इनसे कहा जाता है कि भाई और कुछ नहीं तो ये जो अमेजिशें हो रही हैं चीजों के अंदर कम से कम इसको भी दूर कर दो, और कुछ नहीं किया जाता, यह मेरे बड़ी बड़ी बला होती। वेस्टग्रीन के पीछे में जब चूना मिलता है तो दीजिए घर के सर तो जाता नहीं है, ये तो शुरू हो जाती है शुरू। तो कहा ये हम करते रहे हैं, जो कुछ शयातीन ने उसके अंदर मिला दिया होता था उसे हम अलग कर देते थे, और फिर वो ओरिजिनल मेडिसिन या ओरिजिनल वही जो थी दूसरे रसूल की मुखातब से वो दे देते। तो बात समझ में आ गई ना कि ये नाजे को मंजूर किया, तो जो मैंने कहा था ना गलत मफहूम में किया क्या इन्होंने, कुरान करीम की कुरान करीम के मुतल्लिक खुदा ने ये दावा कर दिया कि तम्मत कलिमत रब्बी खुद को वाद ने मुकम्मल कर दिया हमने इस किताब के अंदर अद्दीन को, जो कुछ देना था नौ इंसानी को क्यामत तक के लिए उसने हमने मुकम्मल कर दिया, मुकम्मल भी होगी ला तब्दील अल कलिमात, इनमें तब्दीली की भी जरूरत नहीं होगी। इस तरह से हमने इन्हें दिया है कि इनमें तब्दीली की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। और उसके बाद कहा कि हमने इसे नाजर इस किताब को नाजिल किया है, उन्होंने लोगों को हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं, मुकम्मल गैर मुतबद्दल महफूज तमाम नौ इंसानी के लिए क्या मत के लिए। अब इस किताब से इधर उधर हटना तो आप सोचिए कितना मुश्किल है। अब ये दूसरी बादशाह खुदा के मुकाबले में कैसे काम की जाए, खाना मुश्किल काम लेकिन मुश्किल काम तो जानतदार के लिए हो, कैसे दूसरी मामले काम की जाए इस मामले का खुदाबंदी के अंदर। अकीदा वाला किया गया कि साहब खुदा ने वो जो दीन में जो वही देनी थी ना वो सारी की सारी इस किताब के अंदर ही नहीं आ गई, कि जो कम्मत कह रहा है इस किताब को मुकम्मल हो गई इसके अंदर की कह रहा है किसमें नहीं मुकम्मल हुई, किसमें मुकम्मल हुई, मिसलो हूं मा हूं, इस कुरान की मिसल कुरान के साथ और भी वो और कुछ कहाँ है, वो अहादीस के अंदर नहीं, वो जाने वाले ने जिसने ये कुरान दिया था हुजूर ने तो अपने आखिरी जिक्र विदा के अंदर 1,25,000 उम्मत के सामने ये ऐलान किया था कि मैं तुम्हारे अंदर एक चीज छोड़ चला हूँ, इसका इब्तदा करते रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, किताब अल्लाह की किताब है, वो बात ही ठीक है। उसके बाद जो दौर सदर अव्वल का आपके यहाँ है जिसे आप खिलाफत अल्लाह कहते हैं, वहां भी एक यही किताब थी, कोई और थी नहीं, 200-250 साल तक यही एक किताब थी। हत्ता के जो हमारे यहाँ तारीख में बनी मैया के दौर से तो बहुत ज्यादा मलूम समझा जाता, उस दौर में भी कुरान के सिवा कोई किताब ही नहीं थी, जुड़ी कोई फिका ही नहीं थी, कोई हदीस की किताब नहीं थी। 200-250 साल के बाद ये जो कुरान की मिसल कुरान के साथ, कुरान की मिसल कुरान के साथ मिसल ही ना है, वो मजबूत कहां से मिली आपको, ईरान से इतने साथ। मैं उन बुजुर्गों की हालत नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन वो तो वाकई है ना कि ईरान से बुखारे से आए, नेशापुर से आए, राजस्थान से आए, छह आपके यहां से अजीज को जमा करने वाले, छह ही आपके यहां ये सहाय सुत्ता उनको कहते हैं, छह हदीस की फ्री फ्री किताबें, और ये छियों के छह जो थे ये सारे ईरान से आए अरब वालों को बताने के लिए कि तुम्हें बताएं तुम्हारे रसूल ने क्या कहा था। यानी जिनके अंदर ये रसूल रहे उनके अंदर जो मिलकत रही मुसलसल करिए आ रही थी, उनसे आगे ये कहा कि तुम्हें क्या पता है, हम बताते हैं फरमा दीजिए। उनमें से एक ने यह कहा, पहले जो सबसे बड़े हमारे यहां असल उनको तो बहना बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी ने कहा कि मैंने हदीसें जमा करनी शुरू की, कहां से जमा करनी शुरू की, अल्लाह के जमाने के कोई वर्क मिल गया था जिनको लिखा हुआ था ना, तरीक यह था कि वो आपसे मिले कि क्यों भाई तुम्हें कोई हदीस याद है रसूलुल्लाह, हाँ हाँ याद, क्या कहा था जी ऐसा था, तुम्हें कैसे मालूम है, कहने के मैंने फलां से सुना। अब ये 200 साल के बाद की बात है, 256 में ये सब इमाम बुखारी उनका इंतकाल हुआ था, तो 200 ही अगर ले लीजिए या 200 से भी ऊपर के साथ, मैंने उनसे सुना था, और वो कहाँ है वो तो बताते थे, उन्होंने कुछ कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने फलां से सुना था, उन्होंने कहा था मैंने फलां से सुना था, और फलां से सुना था करते करते वो कहने लगे कि रसूलुल्लाह ये अब्दुल्ला के साथ भी करता हूँ, यानी बात ही बात में उन्होंने कहा इस किस्म की 6 लाख हदीसें मुझे मिली, मिसल हूँ माहू खुदा की तरफ से कुरान की मिसल रही कुरान के साथ रखने के लिए 6 लाख मिले। चलो कुरान में तो 6000 ही हैं, 6600 से करीब आयात हैं, 6 लाख मिले बिलमा लोग इतना बड़ा हिस्सा तो एक ही से मिल गया। कहने लगे नहीं नहीं उसमें से मैंने खुद ही इंतखाब किया सोचा और उसमें से 5,96,000 जो थे वो तो मैंने मुस्तरदी चाहती खुदा की तरफ से यही आई हूँ मुस्तरदी कर दी, और बाकी ये करीबन 6,000-7,000 के करीब हैं, लेकिन एक एक हदीस दो दो तीन तीन दफा भी आई है, इनको अगर एक दफा गिना जाए तो करीबन 3,000 ही बनती है इनका, ये इन्होंने रखी। मुस्लिम शरीफ वाले आए इन्होंने इस किस्म का ही मतलब दाऊद जो आए 6 हदीस की किताबें जो मैंने तिरमिज़ी वाले आए इनके उन्होंने इसी तरह से उस दौर में ये मुरत्तब करके ये दिया। ये हुआ मिसल हुई ना हुई कुरान के साथ कुरान की मिसल, ये जितनी फिका कहते हैं ना आप जो है तो मुख्तलिफ इमामों की फिका, उन्होंने भी हर एक फिका वाले ने अपनी सनद किसी न किसी रवायत पे ही रखी है, वो इतनी मुख्तलिफ रवायतें मिल जाती हैं आपको कि इतनी मुख्तलिफ फिकें उनसे मुरत्तब हो जाती हैं। एक मामलकत के अंदर कानून के जाब्ते लॉ के कोड मुरत्तब हो रही, अब अगर आप उनसे कहें कि साहब आपको क्या हक हासिल है तो वो कहते हैं नहीं साहब हमारी तो नहीं है ये तो रसूलुल्लाह की हदीस से मुरत्तब है, वो इतनी मुख्तलिफ हदीस कुरान ने ये कहा था कि तदब्बुर करो कुरान में तुम इसमें कोई इख्तलाफी बात न पाओगे, अगर इसमें कोई इख्तलाफी बात नजर आए तो समझ लो ये खुदा की तरफ से नहीं है, कुरान में ये चीज लागू है। यानी कुरान में अपने मिन जानिबुल्लाह होने की के दावे के सबूत में एक ये दलील भी दी है कि इसमें कोई इख्तलाफी बात नहीं है, अगर इख्तलाफी बात हो तो ये मुनज़्ज़म मुनज़्ज़म हो नहीं सकता। जीवन मन बुनियादी हुकूमतों में एक कोर्ट के अंदर अगर दो मुतजाद किस्म के लॉ कहीं मिले तो दुहाई लग जाती है सर, वहां ये एक दूसरे के खिलाफ इतना कुछ दोनों ने किया, इसके बावजूद इन फिका की किताबों के अंदर या अहादीस जो थी उनमें इस किस्म की रवायात इस किस्म के अहकाम आ गए जो कुरान के खिलाफ जाते हैं, बिल्कुल कुरान की आयत के खिलाफ, भाई वो तो मिसलो हूं था उसकी मिसल उसके साथ तो इसके साथ मिलता जुलता होना चाहिए था ना, वो इसके खिलाफ जाते हैं। अब क्या करें और मुश्किल पड़ी, नहीं साहब, मुश्किल क्या करें, मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर है, आसान हो गई। कहने लगे ये कौन सा मुश्किल काम है। कहा कुरान की बहुत सी आयतें जो हैं कुरान की मंसूख हैं, ये आयत जो मैंने आपके सामने कही कैसे देख लीजिए कुरान में लिखा हुआ। यानी वो कह रहा है कुतुब साबका के मुतालिक, क्यों अकाम को जो इस तरह से गैर खुदाबंदी हो गए थे उनको हमने मंसूख किया। ये कहते हैं कुरान के अंदर ये तो आयत मंसूख है, ठीक है। मनलोकतों के अंदर इस किस्म के कवानीन नाफिज किए जाते हैं जो बाद में उनको एब्रोगेट करना पड़ता है। जिन्होंने इंसानों के बनाए हुए कानून आधार की तब्दीली के दूसरा कानून उसकी जगह मंसूख करके लाया जाता है। लेकिन ये तो आपने देखा होगा ना कि जब भी कोई दूसरा कानून लाते हैं पहले कानून को वो मंसूख करता है तो ऐलान किया जाता है कि फलां जो कानून है उसको मंसूख किया जाता है, उसकी जगह ये कानून दिया जाता है। सारे कुरान में कहीं जो नहीं कि खुदा ने ये कहा हो कि हमने ये जो आयत दी है ये आयत मंसूख कर दी है हमारे फलां हुक्म को, कहीं नहीं। तो भाई साहब ये कैसे मालूम हो कि ये हुक्म मंसूख हो चुका हुआ है, कुरान में तो कहीं नहीं है। ये वहां ना हो हम तो कहते हैं, यानी इनके कहने से ही मंसूख। कितने का काम मंसूख, इब्तदा में इन्होंने कहा कुरान करीम में बहुत ज्यादा तसाहुफ से भी काम लिया जाए, छोटी छोटी जुजियात को भी लिया जाए, तो 600 के करीब आकाम की आयात बनाई जाती है। उनमें से इन्होंने कहा 500 मंसूख। भाई किसी एक के मुतल्लिक भी कहीं खुदा ने कहा है कि हमने इसको मंसूख कर दिया इस आयत की, कहीं नहीं उसने तो नहीं कहा। हम लोग कहते हैं मंसूख बाद गां बाहर हाल आगे आगे तुम चलते आए और वो आप 500 जो थे वो काम होते चले गए, झड़ते चले गए, झड़ते। आप देखिए ये दीन में मतलब हो रहा है, मनलोकत का जाबता कवानीन में मतलब हो रहा है। खुद ही उसमें से कहते चले जाते ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चलिए आखिर में आके शाह वलीला ने मरहूम ने कहा था कि नहीं 5 आयतें ऐसी हैं। उनके शागिर्द मौलाना सिंधी ने कहा कि उन्होंने भी ये 5 इसलिए कह दें कह दी कि अगर वो कहते कि ये नासुख व मंसूख है नहीं तो इसके खिलाफ कुफर का फतवा लगता था। मौलाना सिंधी ने उनके शागिर्द ने ये लिखा कि भाई दौर इस किस्म का था तो वहां तो आप जानते हैं कुफर का फतवा जो था वो तो फांसी की सजा थी। तो उन्होंने वो कुछ नरम नरम सी आयतें ऐसी रख ली कि जिन पे अगर बाद में कोई गौर करेगा तो वो बता देगा कि ये नहीं मंसूख नहीं है। तो उन्होंने बहरहाल अकीदा नासुख व मंसूख का बाकी अपना रखा ताकि कुफर का फतवा ना लग जाए, वरना ये जो आयतें उन्होंने कही हैं ये देखिए मैं दावत करता हूँ कि ये भी मंसूख नहीं है। मजाक हो रहा है खुदा की किताब के साथ। ये वो नासुख व मंसूख जो थी और नासुख व मंसूख यहाँ तो वो 500 आकाम का की था और वो कह गए साहब अलीला 5। मौलाना सिंधी ने उन 5 को साबित कर दिया तो आगे बात चली कि शुक्र है साहब कोई मंसूख नहीं है खुदा हुक्म इस कुरान में। अब जो अगले आने वाले जो थे ये क्या करते, वो अथॉरिटी जो थी इतनी बड़ी नासुख व मंसूख वाली वो तो खत्म कर दी इन लोगों ने, इनके पास तो ये बात नहीं नहीं कहने लगे नहीं क्यों नहीं। हमारे दौर के जो सबसे बड़े मुफस्सिर मौलाना मौदूदी साहब हैं, सुनिए अजीजा ने नाम दिल के कानों से कुरान के साथ क्या हो रहा। उन्होंने अभी 2 साल भी हुए हाल ही में उन्होंने लिखा है कि कुरान दर हकीकत सबा 7 जुबानों में नाजिल हुआ था। कुरान यही 7 जुबानों में खुदा दिया था, 7 जुबानों में रसूल सलसल में दिया था, 7 जुबानों में जो पहले 3 खलीफे जो थे 2 खलीफे उनके जमाने में भी था। 7 जुबानों वाले कुरान साहब हजरत उस्मान ने अपने ही हुक्म से उनमें से 6 को तो जला दिया मंसूख करके और 1 बाकी रखा जो हमारे पास है। ये वो कुरान है आपके पास, वो जिंदा मौजूद है, उनकी ये तारीख मौजूद है, आप देख रहे हैं वो क्या रहा। आप तो इस प्रकार ऐसे के साथ जो छिपा है, एक दूसरे की मिलती नहीं एक दूसरे से, बहन का जिक्र किया है यहाँ सर ही गायब है गरीबा से। उन्होंने कहा ये पुरानी नहीं, ये तो हजरत उस्मान ने एक रख लिया, तो उनकी मर्जी के मुताबिक था, उनमें से कौन सा भी उनको पसंद आया उन्होंने एक रख ली। अब आप सीने से लगाए लगाए फिर रहे हैं, मैं क्या ये रहा था मटते हाथों की दूसरी आयत भी देख लीजिए, ये भी अभी मैंने 22:52 के जिसमें ये था कि ये रसूल तुमसे पहले भी हमने जितने रसूल भेजे उनके साथ यही हुआ कि उनके जाने के बाद शयातीन ने उसकी वही उनकी वही में कुछ मिला दिया, हमने दूसरा रसूल भेज दिया, अमेरिश को उसने अलग कर दिया, खालिश वही उनके सामने फिर पेश कर दिया, हमने उस अमेरिश को मनसूख कर दिया, खालिश वही फिर पेश कर दिया। ये था जी इस आयत वाजे मतलब इस आयत का अल्फाज, वाजे इस आयत के मतलब, लेकिन वो जो तस्वीर आती है वो क्या कहती, मैं फिर अर्ज कर दूं कि वो तो मैंने जब कहा था ना कि वो 6 ईरान से आए थे, मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनका ईरानी होना नाकाबिल एतमाद था, कहने की बात ये भी कि दीन अरब से चला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कौम में पैदा हुए, अरब के अंदर मुसलमानों की इस्लामी मंदकत या मुसलमानों की मंदकत मुसलसल चली आ रही थी, सारा अरब मुसलमानों का था, तो इस पूरे के पूरे अरब में कोई एक भी ऐसा ना उठा कि जिसने इन रवायत या हदीस को कुछ जमा किया, समझ यहाँ तो कोई एक भी पैदा ना हुआ जो यके बाद दीगर पैदा हुए सारे के सारे बाहर से आके इनके यहाँ से आए। और आप हैरान होंगे कि पहली तफसीर जो आपके यहाँ लिखी गई जिन्हें इमाम तबरी कहते हैं, तबरी नाम नहीं है, कब्रिस्तान के रहने वाले को तबरी कहते, वो कब्रिस्तान से आए, अदाई साहब की तफसीर में क्या कहा कि ये जो है ना कि रसूल के साथ होता ये था कि उसकी वही में, यानी रसूल की जिंदगी में, रसूल की वही में शयातीन कुछ मिला देते थे, रसूल की वही में रसूल की जिंदगी में शयातीन कुछ मिला देते थे, और कहा यही कुरान के साथ था, रसूल्ला की जिंदगी में अब एक वाकया इसके साथ मंजूर किया, कुरैश के साथ बड़ी मुखालफत, कुरैश बड़ी मुखालफत करते थे, हुजूर उनकी बुत परस्ती की मुखालफत करते थे, उनके बुतों की मुखालफत करते थे, मुखालफत बड़ी शिद्दत तक पहुंच गई, उन्होंने तहैया कर लिया कि हम या तो इस रसूल को या निकाल देंगे या इस रसूल को कत्ल कर देंगे। रसूल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, माज अल्लाह मैं उनकी ये रवायत बयान कर रहा हूँ, तो उसमें आप मैं उस तस्वीर में नहीं जाता जो सूरत तलावत कर रहे थे, उसके अंदर नमाज के अंदर कुरान की एक सूरत की जो नमाज में तलावत की जाती है अलहमदी उसके बाद जाके कहते हैं वो तो तलावत सुन मार रहे थे, उसके अंदर आपने ये कहा कि ये इनके यहाँ के जो बुत थे राजू मनात और रज्जा जो थे, रसूलुल्लाह ने उस अपनी उस सूरत के अंदर ये कहा कि हाँ खुदा ने ये तुम्हारे लात मनात रज्जा जो है इनको भी बड़ा मुकर्रम पैदा किया है, और उसके बाद अल्लाह का अकबर ये सारे खुश हो गए कि लोग मुफामत हो गए। बाद में ये सवाल हुआ कि ये कैसे ये हो गया, तो खुदा ने ये कहा कि यार रसूल तेरी इस तलावत में शैतान ने ये चीजें मिला दी थी, हम इन्हें मंजूर करते हैं। की कुरान की सूरत नमाज में तलावत फरमा रहे हैं, कहा यह जाता है कि खुदा ने यह कहा कि इसके अंदर ये अल्फाज शैतान ने तुम्हारी जुबान से निकलवा दिए थे, माजन अल्लाह अजीजा ने मन ये चीज करीबन 1000 साल से ये चीज आपके यहाँ चली आ रही है, सही मानी जा रही है, पढ़ाई जा रही है, इसके पढ़ने वाले इसकी समझें देने वाले आपको लमा कहलाते हैं, जो इसके खिलाफ कहता है कि ये नहीं हो सकता, खुदा का रसूल तो ऐसा नहीं कर सकता, शैतान उसके ऊपर गालिब आ जाए और उसकी जुबान से कुरान के अंदर उसकी नमाज में ये अल्फाज मिला दे, उसे कहा जाता है कि ये मुनकर हदीस है और काबिल दार है। अजीजा ने मान क्या कुछ कहा जाए कि क्या हुआ हमारे साथ। फिर आप कमीशन बैठाते हैं ये मालूम करने के लिए कि हमारा जिस मुकाम पे हम आज इतने गरीब और सार हैं ये क्यों है। खुदा की किताब के साथ जो कुछ ये करता है अजीज आने मान खुदा से ईमान नहीं, वरना कहूंगा मैं कि ऐसी चीजें इस किस्म की चीजें तो काबिले बर्दाश्त कौन है। तबाह इस तरह से हुई कि खुदा की किताब के साथ उन्होंने तो इतना कुछ किया भी नहीं होगा जितना कुछ नहीं किया उस किताब के साथ। मैं तो दिल पर पत्थर रख के कभी कभी इस किस्म की बात आपसे कहता हूँ, वरना अगर ये सारी चीजें तस्वीर भी आपके सामने लाऊं, रवायात भी आपके सामने लाऊं, क्यों सोचे हैं तो मालूम नहीं तो किस दिल गुर्दे के साथ हमने ये सब कुछ पढ़ा और हम सब कुछ मानते चले आए। उसमें कितना बड़ा एहसान है कि उसने अल्लाह कम अज कम इस जर्राए नाचीज को इस किस्म के अंदराज से निकाल दिया कुरान की ऊपर। मैं कह ये रहा था कि यहूदियों से कहा यह जा रहा था कि तुम इस तरह के एतराजात करते हो कुरान के खिलाफ कि इसमें ये बात हमारे खिलाफ ये बात ना, अपनी असली किताब जो थी हजरत मूसा की कहीं लाओ उसको। मैं आज भी ये कहूंगा कि हजरत मूसा की तरफ जो किताब नाजिल हमने की थी वो ऐसी ही हदायत देने वाली थी जैसा कुरान हदायत देने वाला है। इनके खिलाफ कोई और किताब अगर है या इनके सिवा कोई और किताब तुम्हारे पास है जिसको तुम कहते हो कि इनसे ज्यादा हदायत देने वाली है वो लाओ, मैं उसका भी इतबा कर लूंगा अगर वो खुदा की किताब हुई। अजीब ने मन अब तक वो कितनी बड़ी कुछ आदत लड़की है। तो अगर कोई किताब तुम ले रहे हो अंबिया साबिका में वैसी ऐसी जो यकीनन गैर मुहर्रिक और वही जो हमने दी जो खुदा ने दी थी उस नबी को, मैं उसका इतबा कर लूंगा। इसलिए कि मैं किसी अपनी किताब का इतबा नहीं कर रहा या तुमसे करा रहा, मैं तो खुदा की किताब का इतबा करता हूँ तुमसे कराता हूँ। अगर खुदा की कोई किताब अपनी असली शक्ल के अंदर कहीं और मौजूद है उसे लाओ, तो मैंने भी तुम्हें खुदा की किताब का इतबा करना, मैं उसका इतबा कर लूंगा। ये होता है खुदा का रसूल। यहाँ कहा जाता है कि खुदा की तरह से नाजिल करता किताब तो एक तरह, ये जितने फिरके हमारे यहाँ मुख्तलिफ हैं फिका अलग अलग समझिए। नमाज तो कम अज कम एक ऐसी चीज है ना जिसको ये कहते हैं कि वो दीन का पहला धर्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में नमाज पढ़ी, हजारों लाखों की मौजूदगी में पढ़ी। ये कोई ऐसी नजरी एकेडमिक कोई चीज नहीं थी, तो अकीदे की बात थी, किसी की समझ में आया किसी की समझ में नहीं आया। मासूस हरकत के साथ ये नमाज होती है ना, औकात में कहिए हरकत और सकनात में करिए अरकान में कहिए। सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाखों के सामने 23 बरस तक ये कुछ हुजूर करते रहे और आज उम्मत में एक मुत्तफी का आया नमाज की शक्ल नहीं है और हर फिर का अपनी अपनी नमाज के मुतालिक मुद्दा कि ये रसूलुल्लाह की नमाज है। इस तलाब की कैफियत क्या है? फिरकों में आपके यहाँ के साथ मालूम ना हो, बुनियादी तौर पर तो हमारे यहाँ शिया सुन्नी अलग हुए, शिया हजरात को अलग छोड़ दीजिए, उनकी नमाज सुनिए तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुन्नियों के यहाँ आप लीजिए, ये सारे अहले सुन्नत वाल जमात के तहत सुन्नत का इत्तेबा करने वाले और इस जमात उनके इत्तेमा इनके साथ होता है, अहले हदीस इनके अंदर शामिल, उनकी नमाज ये दूसरे जो कहलाते हैं अहले फिका कहलाते हैं या हम्फी यहाँ आमतौर पर कहलाते हैं, ये उनसे मुख्तलिफ है, ये उनसे ही मुख्तलिफ है। ये जो सुन्नी हैं हिंदुस्तान यहाँ पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये अहले फिका सुन्नी, ये फिका वाले बाकी मुल्कों के अंदर कहीं हम्बली शाफी मालिकी ये भी हैं, हमारे यहाँ हन्फी हैं अहले फिका जिनको कहते हैं। आप हैरान होंगे कि ये हन्फी देवबंदी और बरेलवी दोनों सुन्नी हन्फी हैं, गौर से सुनिए सुन्नी हन्फी। तो ये ठीक है भी और कुछ नहीं तो इनकी तो नमाज एक वही होनी चाहिए ना, पता ही है इख्तलाफ कहां तक चला गया। पहले भी मैं बता चुका हूं फिर दोहरा दूं, पिछले साल का जिक्र है ना आपस में, जब ये इनका सियासी गठजोड़ इतना था कि ये इत्तेहाद मुतहद थे, किस बात में मुतहद थे, नमाज में मुतहद थे, ये नहीं, यहाँ ये सामने है ना चाहे नोयोजी साहब की कोठियां, इनने इफ्तारी की दावत दी क्योंकि ये पीएनए में शामिल थे। बरेलवी हजरात और देवबंदी इनको कहते हैं, ये जो हनफी सुन्नियों के दो ग्रुप, हनफी सुन्नियों के दोनों आम आदमी, मुफ्ती महमूद साहब देवबंदियों के नुमाइंदे, मौलाना नूरानी साहब बरेलवियों के नुमाइंदे, हनफी सुन्नी रोगा उपचार किया, मुतहद है, मेजियों को सब लोग खाने पीने को है, इंतराब क्या होता है, इस तारीख के तो फौरी बात अजान हो जाती, अजान हो गई। मुफ्ती साहब अपने टोले को लेकर उसी नाम के अंदर एक तरफ खड़े हो गए, नूरानी साहब अपने टोले को लेकर दूसरी तरफ खड़े हो गए उसी नाम में, सुन्नी हनफी नमाज में अलग अलग, नमाज पढ़ने के बाद इत्तेहाद है ना, फिर खाने के लिए उसी में होती है। उसमें तो एक गल कही सी उन्होंने, माफ रखिए पहला मित्रा ने कहा था कि उसमें साथी आ जाता है एक जाति का, उन्होंने कहा था कि खान पीन नु वखो वख, सौन पुराण नु कठे, इतने सारे खान पीन नु कठे, नमाज भी वखो वख, सुन्नी हनफी काबे से इमाम आ गए, यहां इमाम काबा बल्कि इमाम हरमैन शरीफ है मदीना पर, ये बात भी इमाम आ गया था। आपको याद होगा कि जहां इन्होंने जब नमाजें कराई हैं तो एक एक नमाज के अंदर वो लाखों का इज्तिमा यहां का क्या होता था, ये उसकी भी बात सुन के इज्तिमा की याद आ गया कि उन दिनों में दाता साहब का उर्स हो रहा था, याद है ना आप, अगर आज तो अभी तो कल की बात है, अभी इत्तेफाक से शाही मस्जिद से करीबी तो है वो दाता साहब, मस्जिद को जोर साया वो इमाम जो थे, उन्होंने यहाँ शाही मस्जिद में नमाज पढ़ाई। ये इमाम जो काबे के इमाम हैं, हैर हदीस हैं वो लोग, उनके नजदीक ये कब्रों के गुंबद, उनके ऊपर उर्स, वहां के गुसल, वहां की चादरें, ये तो बड़ी चीज है, पुख्ता कब्र बनाना भी खिलाफ इस्लाम है। कब्र को शायद 6 इंच या 1 फुट से ज्यादा ऊंचा रखना खिलाफ इस्लाम है, उस पर दिया जलाना खिलाफ इस्लाम है उनकी रूह से, तो ये तो अलग बात रही ना कि यहाँ के साथ जितने थे उन्होंने उनके पीछे वहां नमाज या जुमा पड़ी, उधर सलाम फेरे तो वो थे दादा साहब भी आन के चादर पर हमला था, ये भी इस्लाम, ये भी इस्लाम, ये इन्होंने अच्छा रखा हुआ कि वहां कियामत में जाके वहां अगर कुर्सिश हुई, उन्होंने कहा कि वो तुमने वहां जाके ये जो था एक अहले हदीस हमली उसके पीछे नमाज पढ़ ली, वो तो बड़ा जिर था, असल इस्लाम तो वहां होता है, उन्होंने कहा हजूर हम तो वहां भी जाकर चादर चढ़ाए थे, चलो दसो जोड़ा टिकट कबूल है साढ़े को मौजूद है, 5-7 टिकट दे के रख लेंगे, इमाम साहब वो तशरीफ ले गए कराची में भी उन्होंने नमाजें पढ़ाई थी। उसके बाद ये नूरानी साहब वाला जो क्रिकेट कल्टन नूरानी साहब ने वहां ये फतवा दिया कि जिन लोगों ने जितनी नमाजें इन इमाम के पीछे पढ़ी हैं वो सारी नमाजें बातिल हैं, वो अपनी नमाजें दोबारा पढ़ें, हनफी सुन्नी दोबारा पढ़ें। नूरानी साहब ने एक और भी बयान अपने पर्चा, इनका अहले सुन्नत पर्चा निकलता कराची से, उसमें एक इससे भी दिलचस्प चीज थी जो लिखी, कहने लगे मैं और उन्होंने लिखा था कि मेरे साथ मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी साहब जो थे और भी कुछ साहब थे, वफद के तौर पर हम मिलने के लिए गए सदर मुमलिकत जनरल जियाउल हक साहब, इन्होंने लिखा ये कि वहां जाते ही उन्होंने मुझसे ये कहा, ये एक साहब ने लिखा है कि वो जो तुमने अभी कहा हजरत उस्मान के जमाने में फिर कुरानों का कहा है वो असल में मुख्तलिफ कबीलों के एक्सेंट्स जो थे, लहजा जो था उसका, वो लहजे का फर्क था, इसलिए उस لہجے کے فرقوں والے قرآن سے نکالا تھا. تو اس سے تو اس لیے یہ تھا کہ ادنوں سے باہر جائے گا تو پتہ نہیں ان کے ایکسنٹ مختلف ہوں. ایک ایکسنٹ والا جو قرآن تھا اسٹینڈرڈ انہوں نے رکھا تھا کہ وہ بات نہیں تھی. میں عرض کروں گا کہ وہ تحریر موجود ہے مودودی صاحب کی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن سات زبانوں کے اندر نازل ہوا, لہجہ نہیں. اور لہجے کا اختلاف تو تحریر میں مٹا ہی نہیں جا سکتا. لہجہ تو ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو الگ لہجے کے قرآن ہوں. وہاں تو آج بھی یہ مصر والے وغیرہ جن کو گاہی کب بولتے ہیں وہ گیلانی کو گیلانی کہتی. تو یہ لہجے کا فرق جتنا بھی ہوتا ہے یا ویسے ہی جس طرح سے لہجے کا فرق, تو اب تو یہاں سے تقسیم کے بعد ہم لوگ یہاں مل گئے آپس میں آ کے, ورنہ کیفیت یہ تھی ہم پنجابی بولنے والے ایک ذکر کوئی بول دیتا تھا تو ہم بتا دیتے تھے, ضلع ہی نہیں تحصیل تک بتا دیتے تھے کہ تھی اتنے رہنے والے آ گئے. جنہیں کسی نے تنخواہ کیا کسی کیا ہوشیارپور ہی ہونے کی ہوں گی. تھی چیری نے چیری جی سے کہہ لے تو کہہ ہونے تھی لاہوری ہونا, وہ کہنے نے جن نہیں اچھی لاہوری ہے گئے سمجھو نا. اور جی میں او پرا او بہن یہ لہجے کا فرق آ جائے یو پی والے تو پرا تو پہن کیا ہی نہیں سمجھا, لکھا جائے گا یہ ایک ہی طرف. لہجے میں یہ فرق ہوتا یعنی ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لہجے کے فرق والی بات نہیں تھی, وہ زبان انہوں نے لکھا ہے کہ کس زبان میں لہجے کا فرق جو ہے میں نے عرض کیا نا, سوال ہی نہیں ہے کہ یہ لہجے کا فرق آپ مٹا دیں. چھ زبانوں کے سات زبانوں میں قرآن لکھا ہوا ہو ان کے لہجے مختلف ہیں, وہ لہجے مختلف کیا ہوتے ہیں؟ لہجہ تو ایک شخص جب پڑھتا ہے کسی چیز کو یا بولتا ہے اس کا جو ایکسنٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایکسنٹ, تحریر میں نہیں بتایا جاتا. یعنی ہو یہ انہوں نے لکھا ہوا. میں کیا یہ رہا تھا دیکھو نا درمیان میں بات آ جاتی ہے. ہاں انہوں نے نورانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ نمازیں ساری باطل ہو گئی, دوبارہ پڑھی. وہ گئے جرنیل صاحب کو ملنے کے لیے صدر محترم کو. انہوں نے اپنے یہاں لکھا ہے آ کے کہ انہوں نے جاتے ہی مجھ سے یہ کہا کہ نورانی صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بڑے وسیع القلب اور کشادہ ظرف واقع ہوئے ہیں کہ آپ ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. کہا کہ میں نے فوراً ان سے کہا کہ صدر محترم کیا فرما دیا آپ نے, کسی ٹوٹ کر مارے تو جھوٹ کر مار رہے تیرے سامنے آ کے ہیں وہ کیا چیز کیا بات ہے تم نے ہر ایک کے پیچھے لگا یہ ان کے الفاظ کہ یہ تو یہی ٹکے ٹکے کے جمعراتی ہیں تک پوجی ہے یہاں کے معلوم. یہ تو ایک طرف رہا, ہم تو کعبے میں جا کر بھی کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ان کی تحریر نہ دی. میں ایک مثال بیان دے رہا ہوں کہ یہ محسوسات کی چیز ہے نا, نماز جس طرح سے پڑھی جاتی ہے جسے سنت و رسول کا آپ اتباع کہتے ہیں اس کی روح سے چلیے کچھ عقائد کا اطلاع سے ہی نظریات کا خیالات کا اور وہ رسول کے بارے میں تو یہ بھی نہیں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. عزیزان من کے وہ کسی عقیدے اختلاف یا نظریے میں بھی کوئی اختلاف اور رکھتا ہوگا وہ تو ہم تم قرآن ناطق ہوتا تھا مجھے. لیکن خیر یہ اگر سمجھا جائے کہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی, نماز پڑھ کے تو دیکھا ہوگا سب نے, تو قیامت یہ ہے کہ لاکھوں نے اس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے حضور کو دیکھا اور ہر ایک تین فرقے کی نماز الگ الگ ہے, ہر ایک اپنی نماز کو رسول اللہ کی نماز قرار دے رہا ہے. کیسے مٹا دیں گے آپ؟ کس طرح سے یہ شرک مٹ سکتا ہے؟ خدا ایک, اس کا رسول ایک, اس کا قرآن ضابطہ ایک, قانون ایک, ایک مملکت ایک, اتھارٹی ایک, ضابطہ ایک, قانون ایک, ملت یہ ہے اسلام, یہ ہے نظام اسلامی, یہ ہے نظام خداوندی. آپ کہتے ہیں تو یہ ہے نظام مصطفیٰ جس نظام کے اندر نماز تک اکٹھی نہیں پڑی جا سکتی, اسے آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تو نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول نے تو یہ بات کہہ دی کہ اگر تم واقعی وہ کتاب جو خدا کی طرف سے نازل وہ تمہارے نبی کرے اپنی اصلی شکل کے اندر وہ کتاب لے آئے, میں تو اس کا اتباع کروں گا. यहाँ उम्मत के अंदर आपके यहाँ इतने जिक्र के पैदा हुए हैं। हर एक अपने अपनी इस चीज को मंसूब कर रहा है एक अथॉरिटी की तरफ, और ये मुख्तलिफ तरीके सारे क्या हो सकती है कि अथॉरिटी ऐसी जो मुख्तलिफ तरीके से सारे। और फिर बताओ तो सही एक बात का एक कवानीन आप कैसे मुरतब कर रहे हैं, उनके रूप से सवाल ही नहीं था। अगर ये जो चीज थी नमाज को जोड़ दिया जो है बड़ी बाबरकत बात है, बड़ी अहम बात है, लेकिन उस पर भारत में अपनी अपनी तमाजें तो नहीं होंगी। अगर कहीं ये शक्ल पैदा हो और इस्लामी ममलिकत में तो ये होनी चाहिए बुनियादी चीज है, तो कम अज कम एक तबाह तो इससे कीजिए कि नमाज तरह से पढ़ने शुरू कर दीजिए। लेकिन इस चीज को पहले ही कानून के दायरे से बाहर रख लिया गया कि अकायद में कानून दखल नहीं देगा, मसालत में दखल नहीं देगा, मुसारब में दखल नहीं देगा, शख्सी कवानीन में दखल नहीं देगा। एक ममलिकत होगी, एक उसकी रियाया होगी, दावा एक निजाम का होगा, और ये सब कुछ अलग अलग होगा। और वो रसूल कहता है कि ये कुरान से एक तरफ, अगर तुम किसी पहला नबी की भी ऐसी किताब ले आओ जो खालिसतन खुदा की किताब हो, मैं तो उस पर इत्तेबा करूंगा, तो उसमें इख्तलाफ नहीं होगा। हाँ कुरान ने यह कहा तो वक्त हो गया, कहा ये कहा उनको ऑफर दी तो तुम ये कहते इख्तलाफ वाली बात है, इख्तलाफ तो इसलिए तुम्हारे पास है नहीं वो किताब, मेरी ऑफर तो ये है वो किताब ले हो अगर तुम्हारे पास है, मैं उसका इस्तेमाल शुरू कर दूंगा कि वो और कुरान एक ही होगा, क्योंकि एक खुदा की तरफ से ये दिया गया है अथॉरिटी माखज़ और चश्मा मंबा इसका एक है, इसलिए मैं तो इसका भी इस्तेमाल शुरू कर दूंगा। अगर तुम्हारी इस ऑफर को भी ये एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर समझ लो कि ये हक और सदाकत का इत्तेबा नहीं, ये अपनी अपनी ख्वाहिशात का इत्तेबा किए जा रहे हैं, और हर शख्स उसका नाम इस्लाम रख रहा है। अहवाहुम, और बात आधी है अभी इस आयत की अजीजा ने मान, अहवाहुम वाली बात का की तशरीह तफसीर वो अगले टुकड़े में आता है और बड़ी अहम चीज है। लेकिन यहाँ तो ये देख लिया ना जो इन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद ये खिलाफात बरकरार रखते हैं तो समझ लो खुदा की किताब का इत्तेबा नहीं हो रहा, अपनी अपनी ख्वाहिशात का इत्तेबा हो रहा है। सूरह अल कसस की आयत 49 तक हम आ सके, अजीजा ने मन 50 से हम आइंदा देंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।